नमस्कार श्रोता मित्रों, आज जो बात करनी है वैसे बात छोटी है मगर उसमें बहुत बड़ा बोध छिपा हुआ है। हमारे पुरखों के समय के कुछ वार्ताओं में छिपे हुए बोध पाठ ऐसे हैं कि अगर हम हमारे जीवन में उनको उतारे तो सफलता एवं कल्याण हमारे लिए निश्चित हो जाता है। बात है एक किसान की और उसके चार बेटों की। किसान कुछ समय से बीमार रहता था। अब उसे लगा कि शायद अंत नज़दीक में है, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। बोला, देखो बेटे, मैं अब कितने दिन रहूंगा मुझे मालूम नहीं है, शायद मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे आप चारों को कहना है कि हमारा जो खेत है वो खेत में कहीं हमारी जो बचत थी, जो मैंने बहुत मेहनत से कमाई करके पैसे बचाए थे, उसको एक चरू में भर के कहीं मैंने गाड़ा है, क्योंकि चोरी की आशंका थी, कहीं कोई चोरी हो गई तो ये जीवन भर की मेरी पूंजी जो है वो चली जाएगी। तो वो दहशत से मैंने ये चरू खेत में एक गड्ढा खोल के उसमें गाड़ा है। तो तुम्हें इतना कहना है कि जब मैं ना रहूं तब मैं उसका लोकेशन, मेरी याददाश्त कुछ कम हो रही है, एग्जैक्टली यानी कहाँ पे वो गाड़ा है और कहाँ से आपको निकालना है वो बात तो मैं नहीं बता सकता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि खेत में कहीं मैंने गाड़ा है। तो आप चारों मिलकर प्रयत्न करोगे तो शायद मिल जाएगा। बेटों की खुशी का पार ना रहा, चारों बाप कमाई पे पले थे आज तक, कोई काम तो करते नहीं थे। अब जब उनके पिताजी इतने बीमार थे और शायद कुछ ही दिनों में वो प्रस्थान कर जाएंगे, ये परिस्थिति है थी, तब ये चारों बेटों को जो उन्होंने बोला कि खेत में कहीं चरू गाड़ा है और उसमें धन है, खुश हो गए। क्या ये हमारे पिताजी ने भी हमारे लिए इतनी खुशखबरी जाते जाते सुना दी, और चारों खुशी से जैसे पागल हो गए। थोड़े दिनों में किसान का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो विधि जो करनी थी, विधि वगैरह जो खत्म हुआ, लोग जो आते थे वो सब मिलने आने बंद हुए। तब एक दिन चारों भाई इकट्ठे हुए, बोले, देखो हमारे पिताजी ने हमें बोला है कि खेत में कहीं चरू गाड़ा है, उसमें धन है, तो हम चारों प्रयत्न करें। अब खेत में कहाँ गाड़ा है तो मालूम नहीं, तो हम चारों कल से काम में लग जाए, ये पूरे खेत की खुदाई कर डाले तो मिल ही जाएगा, उतना उतना तो खेत के बाहर तो ढूंढना नहीं है। चारों दूसरे दिन लग गए, एक सब ने तय कर लिया कि हम खेत में से चरू ढूंढ के रहेंगे। दो दिन, तीन दिन, चार दिन, करीब 15 दिन हुए, पूरा खेतर उन्होंने छान मारा, कहीं भी वो चरू तो नहीं मिला। निराश हो गए कि अरे हमारे पिताजी ने तो बोला था कि चरू यहाँ गाड़ा है, उन्होंने खेत में ही गाड़ा है और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर से देखें, फिर से उन्होंने वो खेत को खोदना शुरू किया। अब की बार थोड़ा जो इनकी खुदाई थी वो थोड़ी और ज़्यादा ऊंडाई तक ले गए, और जब इनका खेत की खुदाई का काम खत्म हुआ फिर भी इनको कोई सफलता नहीं मिली, निराश हो गए। निराश होके वो बातें कर रहे थे कि अरे हमारे तकदीर ही खराब है। पिताजी ने बोला था कि खेत में कहीं चरो गाड़ा है, शायद कोई यहाँ से निकाल के ले गया होगा। वो करीब करीब गर्मी का महीना था, गर्मियाँ बढ़ने वाली थी, उसके बाद बारिश आई। बारिश में ये जो उन्होंने खेत जो बराबर सूरज की गर्मी से तपा हुआ था मिट्टी, उस पर बारिश आई और बारिश के बाद उन्होंने हल जोता और खेत में जो पाक बोना था बोया। अब ऐसा हुआ था कि जो गर्मी पड़ी गर्मियों की बाद, वो उसकी खेत की जो माटी थी इतनी सारी उन्होंने उसको खोद के उथर पाथर कर दी थी, वो बहुत तपी और सूरज के ताप में इतना तपने से उसमें एक तरह से जीव जंतु जो भी पार्क के लिए हानिकारक होते वो जीवाणु नष्ट हो गए। बाद में बारिश हुई, बारिश का पानी भी ठीक से वो अपने अंदर शोष पाई तो पानी यानी भेज भी काफ़ी नीचे तक गया और उसके बाद जो उन्होंने पाक बोया उसमें वो पाक फसल जब देखा तो दिन दोगुनी रात चौगुनी इतनी अच्छी फसल बढ़ने लगी। समय आया, उनको देखा कि उनके ऊपर जो कसने हैं उसमें दाने भी अच्छे लगे हैं और आखिरकार जब उनका पाक पकी गया उन्होंने खेत से सब पाक की कटाई की और अपने खलिहान में ले आए। देखा तो आज तक इतना अनाज उनके खेत में कभी उन्होंने देखा नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, काफ़ी अच्छे दाम आए। तब जाके उनको पता चला कि जो उनके पिताजी ने बोला था वो वही शायद होगा कि खेत में ही किसान का धन है, आप जितनी अच्छी परवरिश खेत की करते हो उतना ही अच्छा आपको खेत से पाक के रूप में धन मिलता है। तो बाप ने मरते समय शायद यही बोध देने के लिए हमें कहा होगा कि खेत में कहीं छुपाया है तो हमने सारा खेत खोद डाला, दूसरी बार उसको खोदा और वो खुदाई के बाद फिर सूरज की गर्मी में वो माटी तपी और उसके बाद बारिश आई तो हमने फिर हल जोता और जो दाने डाले जमीन में वो बहुत अच्छे फसल के रूप में हमें देखने को मिले। और जब फसल आई तो उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी उतना अच्छा दानों का उतार हुआ, खलिहान में वो खुशहाल दिख रहे थे और वो जो इनकी फसल आई थी उसमें से जो अनाज मिला उनको वो उन्होंने अपने लिए जो रखता था रख के बाकी बेचा तो काफ़ी धन भी मिला। तब ये चारों बेटों को समझ में आया कि मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, किसान का धन खेत में ही छिपा है, इस खेत को आप जितनी परवरिश करोगी उतना वो खेत जवाब देगा, आपको अच्छी फसल देगा और फिर किसान को जो धन मिलेगा वही उसका सही धन है, वही उनके जो पिताजी ने मृत्यु समय शायद कहना चाहा होगा वो वही था। तो चारों भाइयों ने उससे आगे के लिए तय किया कि हम चारों मिलके मजदूरी करेंगे, अच्छे से खेती करेंगे और अच्छे से अच्छा पाक लेंगे, अच्छे से अच्छे फसल लेंगे, ये निर्धार के साथ वो चारों भाई फिर से आने वाली सीजन के लिए खेत को ठीक ठाक करने में लग गए। अब उनको गुरुकिल्ली मिल गई थी कि कैसे खेत में से धन पैदा करना है, क्या करेंगे तो अपने खेत में सोना उगेगा। तो ये जो बात थी बोध था कि पहले मेहनत करो, किसानी करनी है तो खेत की परवरिश करो अच्छी तरह से, उसको हल के जरिए आप उसको फिर भी जमीन को ठीक से तैयार करो, फिर अच्छा सा बीज वो तो फसल तो आपकी अच्छी होगी ही और फसल अच्छी होगी तो आपको पैसे भी भरसक मिलेंगे। ये बोध था वो किसान का जो मरणासन्न था तो अब बेटों को समझ में आया और उसके बाद फिर यही बोध पे चलते हुए उन्होंने जो समय आया उसके बाद में अच्छी से अच्छी फसलें ली, चारों के पास अच्छे से अच्छे धन हुए और वो एक तरह से प्रगतिशील किसानों के रूप में जाने जाने लगे। तो ये बात है, किसानी अगर करनी है आपको बिना मेहनत बिना परवरिश जमीन की नहीं होती। तो ये बोध था दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की बात करो आप तो सबसे बड़ा मंत्र ये है कि कठोर परिश्रम जो है सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है और कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। आप ये सोचो कि हम कठोर परिश्रम का कोई विकल्प निकाले, कोई विकल्प नहीं। किसी भी क्षेत्र की बात करो, जो परिश्रम करता है वो फल पाता है, परिश्रम नहीं करता है वो बैठा रहता है। तो आप कोई भी क्षेत्र में हो, आपकी कोई भी फील्ड में स्पेशलिटी हो या धंधा करते हो व्यापार करते हो, खूब परिश्रम करो, सही दिशा में परिश्रम करो, सोचो, सोच बहुत ज़रूरी है। सोच के फिर किसी से अगर आपको सलाह लेनी है सलाह लो और सही दिशा में किया गया प्रयत्न आपको सफलता के शिखरों तक ले जाएगा। ये बोध इस वार्ता से मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी वार्ता, ज़रूर हमें आपके जो व्यूज़ है आपका जो ऑब्जर्वेशन है ज़रूर हमें भेजना, और भी इस तरह की वार्ताएं हम आपके लिए आने वाले समय में रखते रहेंगे और वार्ता के जरिए जो बोध देने का काम है हम करते रहेंगे। पंचतंत्र से भी कुछ वार्ताएं आपके लिए हम लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। तो आज बस इतना ही, आपका दोस्त डॉक्टर जयदारण व्यास आपसे इजाजत चाहता है। हंसते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छा फल पाओ, यही हमारी शुभकामना है।